मैं बड़े फख्र और एहतराम के साथ डॉक्टर कुमार विश्वास को निमंत्रण देता हूँ। स्वागत है। बहुत पहले मैं इनका कहीं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ किसी ने ये बोला कि कुमार विश्वास जी आपके नाम पे तो बड़ी भीड़ जुड़ जाती है। इन्होंने सख्त एतराज़ किया इस बात पे कि देखो इनको भीड़ मत कहो, ये भीड़ नहीं है, ये लोग हैं, मेरे लोग हैं, मुझे सुनने आए हैं। ये जो लोग आखिरी सफ तक नजर आ रहे हैं ना,
खड़े हैं पीछे लोग,
ये दिखाई नहीं दिए आपसे पहले।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन सबको, बहुत बहुत सलाम। ये हिंदी का सौभाग्य है, ये हिंदी के सुहाग हैं ये सब लोग, इनकी वजह से भारतीय भाषाएं और माताएं। देखिए पहले तो मैं भी एक डिस्क्लेमर डाल दूं, आपने डाला है तो, कि मैं जिन सब का पाठक रहा हूं वो सब नीचे बैठे हैं। ममता जी बैठी हैं, महुआ जी बैठी हैं, तमाम इन लोगों का मैं पाठक रहा हूं। सरोज कुमार जी के संचालन में मैंने शुरुआती दौर में पढ़ा, आबिद सुरती साहब की शुरुआती कविताएं जब पढ़ रहा था मान बहादुर सिंह के साथ, वो शायद उन्हें याद भी नहीं होगी, उनकी कविता है बिंदी बिंदिया, वो मुझे याद थी शुरुआती दौर में, बीए के पहले साल में। विजय भाई बैठे हैं, तो पहले तो ये डिस्क्लेमर डाल दूं कि मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है और मैं सदा ये मानता हूं कि भाषाएं और माताएं वो शामियाने और उत्सव धर्मिता से बड़े नहीं होते, वो अपने बेटे बेटियों से बड़े होते हैं।
वाह,
अगर हिंदी नागार्जुन पैदा करती रहे, हिंदी निराला पैदा करती रहे, तो हिंदी विश्व में पढ़ाई जाती रहेगी। हिंदी रविंद्र पैदा करती रहे, बांग्ला रविंद्र पैदा करती रहे, तो पढ़ाई जाती रहेगी। तो मैं ये मानता हूं कि इनमें से जो लोग आए हैं, जो आज आगे बैठे लोगों को नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लोग पीछे हैं, ये हो सकता है कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी, ये हो सकता है कि 50 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल बाद वो सबसे आगे बैठे हुए हों और फिर मेरी जगह कोई और आदमी बैठा हुआ और उन्हें सुन रहा हो, उन्हें प्रणाम कर रहा हो, तो ये तो सब सौभाग्य है। जितने भी युवा आए हैं, जो लड़के लड़कियां आए हैं, इन्हीं की वजह से हिंदी है, यही पाठक।
ऐसा एक जमाने तक हुआ कि हिंदी वालों ने ही आपको अपनाया नहीं, क्यों?
नहीं है वो तो अब भी है, उसमें क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमने पढ़ा, सबने हमने अपनी माँ से सुना ना, स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, पर हम भूल गए इस बात को। मैं बिल्कुल इस बात के लिए तत्पर उत्सुक नहीं हूँ कि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं मेरे बारे में क्या लिखती हैं। मुझे हिंदी का हनी सिंह कहा गया, कवि सम्मेलनों की राखी सावंत कहा गया, और ये कहा गया कि वो मैंने बीए की पहली साल में कविता लिखी थी, बीए की पहली साल के आखिरी दिनों में, जिससे एफेयर था, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, दीवार कूद के उससे मिलने गया, वो मुझसे बोली कि तू पागल है क्या, बाहर निकला तो एक आदमी से टकराया तो उसने कहा अबे दीवाना हो गया है क्या, तो स्कूटर पे पीछे बैठे बैठे एक लाइन लिख दी कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है।
ये हम तरन्नुम में चाहते हैं।
अब एक उस कविता की पंक्ति से अगर आप जज करते रहेंगे, कहते रहेंगे कि है क्या, तो मुझे कोई इस बात का दुख, परेशानी, संकट बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तय है कि मैं चंद्रमा नहीं हूं, खग्योत भी नहीं हूं, मैं एक उंगली हूं जिसके सहारे हिंदी के लोग, हिंदी के नए लोग जो एनरिके पर पहुंच रहे थे, IITs में जब मैंने 2002 में शो शुरू करे तो हंसते थे सब लोग, क्योंकि ये लड़के लड़कियां गाते थे एनरिके, Somebody loves you, somebody miss you every single night। इन्हें कविता सुनाई, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, तो JNU वालों ने आर्टिकल लिख दिया कि भ्रमर कुमुदनी पे कैसे मचलेगा, वो तो कुमुद पे मचलेगा। अब मैंने कहा तुम जेंडर देखते रहो, हमारे पास तो लोग आ गए, पैसे मिल गए, ताली बज गई, ये तुम करते रहो भैया, आप जानो आपका काम जानो, हम सुखी हैं। हमसे पहले वालों ने जो लिखा इतना अच्छा अच्छा लिखा, उन्हें तो भूखा मार दिया हिंदी वालों ने, हम तो बहुत अच्छे हैं। इसी हिंदी ने उन 90 के दशक में नागार्जुन को यूं ही विदा कर दिया, इसी हिंदी ने जब जवाहरलाल जी बड़े बड़े पदों से अभिषिक्त कर रहे थे लोगों को, जब बड़ी बड़ी राजभाषा समितियों के बड़े बड़े बंगले अलॉट कर रहे थे, इसी हिंदी ने निराला को यूं ही विदा कर दिया। और नागार्जुन ने लिखा कि दृष्टि पैनी बाल झबरे फटी लुंगी नग्न तन, किंतु अंतरदीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन, अब करो जितना करना। तो हम तो खुश हैं कि तालियां भी हैं, आप भी हैं, और आगे जो बड़े लोग बैठे हैं इनसे पढ़ के सीखा है, इनसे इनको सबको पढ़ा है, हमारे स्टार्स हैं जितने लोग सामने बैठे हैं, और ममता जी बैठी हैं, मैं गालिब छुट्टी शराब पढ़ के रोया हूँ एक वक्त में, और मैं पहली बार DPT को उसके कारण ही मिलने के लिए गया, मैंने लिखा कि इतना शरारती गद्य बहुत दिन बाद हमने पढ़ा, आपको पढ़ा, आपको पढ़ाया है क्लास में, जब मैं 17 साल विश्वविद्यालय पढ़ाता था तो क्लास में आपकी कहानी पढ़ाई है।
तो क्या ये मान लिया जाए कि डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए ममता जी, आबिद जी या जितने भी साहित्य के दिग्गज हैं, इनका अप्रूवल मायने नहीं रखता?
नहीं, अब मैं अगर इस काम में लग गया कि इनके हम हॉल लगवाने जाऊं हर एक के यहाँ, तो फिर मैं काम कहाँ कर पाऊंगा। मतलब मैं कल अमर उजाला संवाद में था परसों, कल IIT कानपुर में था, आज यहाँ हूँ, कल दैनिक भास्कर का 20 साल पूरा हो रहा है जयपुर में, वहाँ जाऊँगा। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें कोई बात होगी तो ये जरूर एक ना एक नोटिस ले लेंगे, एक ना एक दिन कह देंगे। अब नहीं कह देंगे तो मेरे जाने के बाद कह देंगे, बाद वाले कह देंगे कि यार आदमी तो ठीक था, रात रात भर गाता था, हो सकता थोड़ी कम कविता आती हो, पर जनता काफी ले आया, हिंदी के लिए काफी लोगों को वापस लौटा के लाया, काफी है।
ये आदमी तो ठीक था से मुझे एक बात याद आई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी अक्सर उनके विरोधी यही कहते थे कि आदमी तो ठीक है, बस गलत पार्टी में है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, मैंने ये लाइन अगर किसी के लिए दोबारा सुनी है तो वो डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए है कि आदमी तो ठीक है, बस पार्टी गलत है।
पार्टी भी कुछ ऐसा नहीं है मनोज, कि मेरा कोई मन थोड़ी था, मेरा काम ही नहीं था चुनाव लड़ना या पार्टी में जाना। 2010 में मैं कवि सम्मेलन में बहुत व्यस्त था, दुनिया भर में जा रहा था, तो मेरा एक बचपन का दोस्त है, पहली क्लास से साथ पढ़ा है, उसने कॉमनवेल्थ घोटाले और इन सब की चर्चाएं की, हम लोग साथ बैठते थे, फिर एक आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन में दुर्भाग्य से हिंदी की जो मुख्य धारा है, एक हिंदी में मुख्य धारा है,
हाँ,
एक हम लोग हैं तलछट वाले, मुख्य धारा वाले अक्सर कहते हैं कि यहाँ आ जाओ मुख्य धारा में, यहाँ आ जाओ, तो वो मुख्य धारा वाले उसमें आए नहीं। आंदोलन चलता रहा, पूरा देश जाग गया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इतना बड़ा, 47 के बाद पहली बार इतनी तरह से पूरे देश में लोग जागे, मैं अकेला वहां खड़ा चिल्ला रहा था जो कुछ भी कर रहा था। बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई
जी,
तो पुराने मित्रों के सद्भाव में और उनके कहने पर मुझे उसमें रहना पड़ा, लेकिन वो युग धर्म है, वो कोई काम नहीं है। तिलक से किसी ने पूछा था कि आजादी आ गई तो आप क्या करेंगे, तो तिलक ने कहा गणित का मास्टर हूं, जाके गणित पढ़ाऊंगा। तो अगर ये नेता सुधर गए, एक दिन भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इनकी पार्टी ITI में आ गई, सब कुछ हो गया ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर आके यहीं गाना गाऊंगा, फिर कविताएं सुनाऊंगा, फिर लोगों को तालियां बजाऊंगा, फिर आपको बुला के संचालन करूंगा, मेरा काम थोड़ी है राजनीति।
क्या बात, कुमार बोल रहा है तो गौर से सुनिए, हमारे यार में हिंदुस्तान बोलता है। अब्बास ताबिश साहब ने ये शेर कुमार साहब के लिए कहा था और बिल्कुल बजा कहा था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बतौर राइटर मेरे मन में अक्सर एक खलबली उठती है, और मैं इस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी नई पौध के, नई जनरेशन के राइटर्स हैं, उनकी आवाज़ बन के आपसे ये पूछता हूँ कि जिस देश में हमें सिखाया गया है कि अगर राइटर हो गए आप और आपने कविता को एज ए प्रोफेशन चुना, तो आप एक झोला टांग के और चौराहे पे चाय पीते हुए जिंदगी गुजार दोगे, वहां कुमार विश्वास मर्सिडीज में कैसे घूमते हैं, बिजनेस क्लास ट्रेवल कैसे करते हैं, ये कौन सा मंत्र है जो किसी और के पास नहीं था आपके पास है?
देखिए क्या है, मैं एक बहुत सामान्य अध्यापक का, मास्टर का बेटा हूँ, और अगर आप मैं ऐसे कुछ लोग अध्यापकों के बेटे हों तो आपको पता है कि
मैं भी हूँ,
आप भी हैं, तो फिर आप उसी पीड़ा से गुजरे होंगे। और एक हिंदी अध्यापक का बेटा हूँ, हिंदी के प्रोफेसर का बेटा हूँ, एक मेरे मित्र यहाँ वाइस चांसलर थे भोपाल में, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पिताजी एक UGC के सेशन में आए हुए थे, तो उन्होंने बोला भाषण अच्छा दिया, अच्छा ही दिया होगा पिताजी हमारे, तो शानदार भाषण दिया, तो वाइस चांसलर ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोले सर, आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि मैं गाजियाबाद से आया हूँ, वहाँ एक छोटी सी जगह पिलखवा, वहाँ मैं प्रोफेसर रहा। तो उस वाइस चांसलर ने कहा अरे अरे वहाँ तो मेरा भी एक दोस्त है बहुत बढ़िया, कुमार विश्वास। तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ हमारा ही बच्चा है, तो जैसे मास्टर लोग बोलते हैं सब अपने ही बच्चे हैं, तो उसने कहा अच्छा आपने पढ़ाया है? बोले पढ़ाया नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा है। तो उसने बड़ी सेवा की, उनको विश्वविद्यालय ले गया, उनको हवाई जहाज से भेजा, शॉल वॉल दी। तो मैं दिवाली पर घर गया था, मेरे चार भाई मुझसे बड़े हैं, वो सब प्रोफेसर हैं, एक इंजीनियर है, चारों भाभियां यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, मेरी पत्नी विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, मैं अकेला बेपढ़ा लिखा आदमी हूं घर में। तो अब लोग बैठे हुए थे, तो मेरे पिताजी ने कहा भाई वो मिला था तेरा वाइस चांसलर, बड़ा भला लड़का है, बड़ी सेवा की। तो एक मेरा भाई PG कॉलेज का प्रिंसिपल है, उससे गड़बड़ हो गई, वो बोला हाँ जी बहुत विद्वान आदमी है। तो मेरे पिताजी बोले हाँ विद्वान तो ऐसा है कि नहीं विद्वान बता रहा। तो मैंने उसको फोन करके कहा कि भाई मेरी तो थी नहीं, तेरी भी गई। तो ये मैं गरीब मास्टर का लड़का हूँ सामान्य का, 100 रुपये में पहला कवि सम्मेलन पढ़ा। पर मुझे ये तर्क अक्सर परेशान करता था, पुराने लेखकों को याद होगा, मैं BA की पहली साल में वर्तमान साहित्य में काम करता था, फ्री काम करता था, गाजियाबाद से एक पत्रिका छपती थी, विभूति नारायण जी उसके मालिक मकान थे, बीच बीच में उसमें कुछ किराएदार रहते थे जो उसको संपादित करते रहते थे, मैं उसमें पाठकों के नाम पत्रों की लिस्टिंग करता था, छपता था, ज्ञानेंद्रपति मेरे हीरो हुआ करते थे, स्वप्न श्रीवास्तव, कात्यायनी, ये लोग हमारे साथ लिख रहे थे, बद्री नारायण की प्रेम पत्र बड़ी मशहूर कविता थी, मैं भी उस तरह की कविताएं लिख रहा था। और मुझे धीमे धीमे लगा कि कवि होना या अपनी बात कहना, क्या वो तभी महत्वपूर्ण हो पाएगा जब वो भुखमरी में मर जाए, तब उसके ऊपर हम एक सेमिनार करें, सिंपोजियम करें, लेख लिखें। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये कविता लिख रहा हूँ, कवि सम्मेलन में मैं एक्सीडेंटल गया था, मेरा मन नहीं था कवि सम्मेलन, मैं अन्य तथाकथित मुख्य धारा के लोगों की तरह उन्हें बहुत गर्हित समझता था, ये तो गवैये हैं, गा रहे हैं रात को, तो मैं पैसे नहीं थे, पिताजी ने कहा कि इंजीनियरिंग छोड़ाया तो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मैंने पहले तो घोस्ट राइटिंग की, पत्रिका का नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली में एक पत्रिका थी बच्चों की, उसके मैं कहानियां लिखी दूसरों के नाम से। और फिर एक दिन एक कवि सम्मेलन में अचानक मुझे मंच पर बुला लिया गया मेरे एक दोस्त के यहाँ। जैसे ही मैं पढ़ के नीचे उतरा तो मुझे 100 रुपये मिले, उस जमाने में कविता छपने के, कहानी छपने के 60-65 रुपये मिलते थे। सो पहले 100 रुपये मिले तो मुझे लगा कि आहा, ये काम बढ़िया गुरु। सो बिना किसी मुक्त भाव से मैं उस कवि सम्मेलन जमात में चला गया। लेकिन यहाँ जो नए लेखक बैठे हैं, मैं उनसे नए कवि बैठे हैं जो नवस्वर के लोग पढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रवीण भाई ने पढ़वाया, सरोज जी ने पढ़वाया, उनसे मैं ये कहूँ कि वो मंच फिर भी समृद्ध था, उस पर रमानाथ अवस्थी थे, उस पर देवराज दिनेश थे, उसमें रामावतार त्यागी थे, वहाँ व्यंग लिखने के लिए भी शरद जोशी बुलाए जा रहे थे और मैं उनमें सबसे छोटा बच्चे की तरह बैठा था। तो जिस अखाड़े से मैं आया, उस अखाड़े के पहलवान आज के जो अखाड़े के पहलवान हैं उनसे बहुत बड़े थे, अच्छे थे। तो एक तो मैं कुनबा छोड़ के आया था, वर्तमान साहित्य हंस वाला, जहाँ मैं देख रहा था कि कैसी कैसी राजनीतियाँ चल रही हैं, कहानियाँ कैसे छापी जा रही हैं। मैंने भी एक बार एक बदमाशी की थी, एक बड़ी पत्रिका में कहानी मेरी लौट आई थी, तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, बड़ी सुंदर थी, मैंने उसका फोटो लगा के भेजा,
छप गई।
हाँ नहीं, छपी नहीं, स्वीकृति आ गई उसकी। फिर मैं बदतमीज था तो मैंने किसी को जिक्र कर दिया, उसने संपादक जी को जाके बोल दिया, वो संपादक जी दिवंगत हो गए, ममता जी हसपड़ी, वो जानती है कौन है। फिर 2002 तक आते आते मुझे लगा कि या तो इसे छोड़ दो, क्योंकि जो कवि आ रहे थे, जो पढ़ा जा रहा था, कसम राम की खाते हैं मंदिर यहीं बनाएंगे, इसी इंदौर में पढ़ा जाता था, मुशायरा होता था, तो वो कहते थे कि ये काफिर क्या समझता है जो अपने मन में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो मैंने कहा इसमें मेहनत करते हैं, थोड़ी कोशिश की, विरोध हुआ, काफ़ी विरोध हुआ, भीषण विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद 2007-06 आते आते जो इंजीनियरिंग कॉलेज से लोग आए थे, IIT से, IIM से, NIT से, उन लड़के लड़कियों ने इंटरनेट पर कब्जा किया, ऑर्कुट आया,
चिरकुट, मुझे कुछ याद आ रहा है।
हाँ, देश के एक बड़े कवि ने कहा था, मेरे लिए रिकॉर्डिंग भी है, कि एक वो चिरकुट कवि है, पता नहीं कहाँ कंप्यूटर से कविता पढ़ता है, उन्हें पता ही नहीं था कि कंप्यूटर में क्या कविता नहीं पढ़ता हूँ, कंप्यूटर में एक ग्रुप है, फैन क्लब है। तो वहाँ से बढ़ा, बात चल गई, अब क्या है कि लाइट ज़्यादा पड़ गई, अभी काम कम है, अभी उम्मीद है, कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा लिख लूँ, कुछ अच्छी बात कह लूँ, तो जस्टिफाई कर पाऊँ कि जितना लोगों का आकर्षण मिला है, जितना प्रेम मिला है, जितना पैसा मिला है। और कोई गर्हित बात थोड़ी है भाई, गाना किसी और का, वो मैं आई हूँ दिल्ली, क्या है वो बिहार लूटने,
यूपी बिहार लूटने,
लोक गीत। और मैं आपके यहाँ भी देखता हूँ, चलो आप तो हमारे अनुजो, आप अच्छे गाने इस समय सबसे बढ़िया आपके लिखे हुए हैं, हिंदी फिल्म में गाना लिखेंगे, हिंदी में गाना बजेगा, हिंदी में नाचेगा, फिल्म फेयर लेने आएंगे, आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर, माई भाई, एक अंग्रेजी में लिख दो भाई एक गाना, फिर बताते क्या है। तो ये आत्ममुग्धता जो पैदा हुई, जिन आर्थिक रूप से असुरक्षित जिन परिवारों में बच्चे पैदा होते हैं, उनमें आर्थिक असुरक्षा बहुत दिन तक रहती है। मैंने नौकरी छोड़ी, 2011 में इस्तीफा दिया, तो मेरे पिताजी को इस बात की चिंता कि 17 साल की होगी, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, अब 19 में तो पेंशन मिल जाती। उन्हें तो तब पता चला जब टीवी पे खबर चल गई कुमार विश्वास ने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने 4 गाली अनवरत दी, हवा में उड़ते हो, आकाश में उड़ रहे हो, तमीज नहीं है, हमें देखो आज तक पेंशन से पल रहे हैं। तो वो समय था, मैं उसे एंजॉय करता हूँ, अच्छा है, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना।
वाह 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 वाह। आपने उस जमात का भी जिक्र किया जो हिंदी के गीत लिखते हैं और फिर जाके स्टेज पे कहते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक माय डॉगी, आई वुड लाइक टू थैंक माय कैट एंड ऑल दैट स्टफ। एक बात बताएं, ये एलिटिस्ट लोग जो हैं, एक एलिट तबका खासतौर से दिल्ली का, ये बड़ा खफा रहता है आपसे।
ये इसलिए खफा रहता है मुझसे कि ये जो हवाई जहाज के पहिए अंदर जाता है और इसके बाद देसी के अंदर से अंग्रेजी बाहर आती है एलिट के, वेल यू नो कुमार, तो उनको मेरे से बड़ी नफरत है, क्योंकि मैं देसी आदमी हूँ पूरी तरीके से। और जो आपने जिक्र किया, जो ब्रांड है, जैसे मैंने अभी कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स लिए हैं, अब वो चिल्लाएंगे मेरे ऊपर कि यार ये कपड़े क्यों बेच रहा है।
मैं आपको कट करूँगा यहाँ, मुझे एक बात कहनी है, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ये तमीज़ नहीं है लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। कुछ बरस पहले की बात है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने, जब मैं उनकी फिल्म के लिए गाने लिख रहा था, मैं भी नाम नहीं लूँगा, मैंने उनसे बातों बातों में थोड़ी ज़िद की कि आप एक अशुद्ध लाइन मुझसे लिखने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छी वाली भी है, आप इसको रख लें, ये तो मैंने मेहनत करके लिखी है और ठीक भी है, बुरी भी नहीं है। उन्होंने मुझे एक बात कही कि राइटर्स का कमर्शियलिज्म से कोई लेना देना नहीं होता है और इसीलिए इस देश में कोई राइटर एंडोर्समेंट्स नहीं करता। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ, हुजूर जनाब माई बाप ये एंडोर्समेंट कर रहे हैं और ये राइटर हैं।
तो वो थोड़े बहुत उनको लगता है कि ये कुछ आदमी अभी सुधरा नहीं है, अभी ये गांव से ही है, अभी ये कस्बे से ही है पिलखवे से, और मैं इस कस्बाई बच्चे को मरने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जिंदा रहे, ये ऐसा ही रहे, मिले ना मिले, अब मैं कह दूंगा तो फिर कहेंगे शायद इन्हें भूख है। मुझे, मैं अभी पुरस्कार लौटाने की बड़ी चर्चा हुई, बड़ा हंगामा हुआ, हमारे फतेह साहब बैठे हैं, ये भी एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, तमाम लोग, कुछ ने लौटाया, कुछ ने नहीं लौटाया, कुछ ने समर्थन करा, कुछ ने विरोध करा। एक ने मुझसे पूछी कि साहब आपकी क्या राय है, आप कुछ लौटाएंगे? मैंने कहा हमको नगर पालिका का नहीं मिला, हम देश का क्या लौटाएंगे? हमको आज तक नगर पालिका का कोई पुरस्कार नहीं। बहुत, मतलब नेहा बैठी है, मुझे याद है शरद जी से मैं मिला केशव राय पाटन के कवि सम्मेलन में
जी,
और हवा में था मैं, पाब्लो नेरुदा पढ़ रहा था, रोजेविच पढ़ रहा था, और नया नया जब आदमी हिंदुस्तान में जिसकी नई नई चेतना पैदा होती है वो कम्युनिस्ट जरूर बन जाता है।
हाँ, सच कह रहे हैं।
और बाद में जब उसका बुढ़ापा होता है तो वो सनातनी बन जाता है कि बस बस ईश्वर जाने और प्रभु बस वो कर लिया टाइप। हालांकि मेरा वक्त नहीं आया है क्योंकि हमारा एक कवि है बनारस का
जी,
मंच का कवि है चकाचौंध, उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि ना तो मैं दक्षिणपंथी हूँ ना मैं वामपंथी हूँ। दक्षिणपंथी तो मुझे चिल्लाते हैं कि यार ये हमारे खिलाफ बोलता है, ये धार्मिक सद्भाव की बातें करता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। वामपंथी कहते हैं कि यार ये धर्म की बातें करता है, संस्कृत बोलता है, वेद से सूख सुनाता है। तो मेरे को उसकी लाइन याद आती है कि माना कि हम गधे हैं, पहला डिस्क्लेमर माना कि हम गधे हैं, पर तसल्ली है कि किसी के खूंटे से नहीं बंधे हैं, ना इधर बंधे हैं ना इधर। तो एलीट नाराज रहता है क्योंकि एलीट खूंटे में बंधा है। अब सहिष्णुता असहिष्णुता, आप देखो, जैसे मुझे माफ करेंगे, एक दर्जा है, एक तो एक जमात तो है हमारे यहाँ हिंदी में बड़ी, सबको नहीं कह रहा, काफी लोग उसमें अलग भी है, वरना ये टीवी पे चलाए फिर कहेंगे देखो काला कितना आत्मुग्ध है कैसे बोल रहा था। एक जमात तो ये है जो अनकुपढ़ों की है, जिन्होंने बुराई पढ़ा है, और एक जमात है अनपढ़ों की
जी।
हमारे वेदों में पन्ना उठाकर देखा किधर से वेद खुलता है, वो देखा नहीं राष्ट्र के निर्माण में, उससे पूछो राष्ट्र शब्द आया कहां से, पहला सूत्र बता कहां से आया, वाक सूत्र में किस। तो ऐसे अनपढ़ों और कुपड़ों के बीच लड़ाई होती रहती है।
हिंदी कविता और हिंदी जो मंच थे
जी,
वहां बड़ा प्योरिटी का बोलबाला था कि भाई ये प्योर हिंदी मंच है, यहाँ बस हिंदी वाले आए और हिंदी की ही बातें हों और राष्ट्रभाषा में। इनफैक्ट एक बड़ी मजेदार बात है कि जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी छपती है साल में या दो साल में, तो वो इस बात पे बड़ा फख्र करते हैं कि हमने 200 नए शब्द इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, और जब हिंदी की डिक्शनरी छपती है भारद्वाज में तो इस बात पे बड़ा फख्र होता है कि भाई हमने 200 शब्द हटा दिए, क्योंकि वो हिंदी के थे नहीं, उर्दू से आए थे, फारसी से आए थे, अरब अरबिक लैंग्वेजेस से आए थे। तो कमाल की बात यह है कि जहां प्योरिटी का इतना ज्यादा बोलबाला हो, वहां आपने हिंदी मंचों पे उर्दू के शायरों को बुलाना शुरू किया, शायद 2005 की बात,
2005 के बड़ा विरोध हुआ। देखिए हमारे विद्वान लोग बैठे सामने, हमारे यहाँ दो कवि हैं समकालीन
जी,
हमने सबने पढ़ाए पढ़े हैं, एक है महाकवि केशव
जी,
और चार नरेश के यहाँ राज्य कवि थे, उनका बाकायदा महल है
जी।
और केशव सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार, हमको तो मिलेगा नहीं लेकिन काफी लोगों को मिलता है कवियों को। और एक कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो चित्रकूट में बैठ के रोज गाते हैं, सामने घूमने वाले लोग रोज जस्टिफाई करते हैं इस लाइन में, और गोस्वामी जी पढ़ते समय शायद पहचान जाते होंगे कि इस लाइन में पंच है कि नहीं है, ये पहुंच रही है कि नहीं हो रही है। वो कितना ही स्वांत सुखायक हैं, वो लिख जनता के लिए रहे थे। दोनों ने राम की कहानी लिखी, एक ने रामचंद्रिका लिखी, एक ने मानस लिखी, और केशव को भाषाई शुद्धता का इतना अहंकार था कि उन्होंने एक जगह लिखा कि भाषा बोल न जानी है जिनके कुल के दास। मेरे घर के तो नौकर भी संस्कृत बोलते हैं, ऐसा कहा केशव ने, और मैं हिंदी में कविता लिख रहा हूं, मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज डिस्कम्फर्ट। और ऐसा बोला, भाषा बोलने जानी है जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता लिखी जड़मती केशव दास। मैं जड़मती हूं, मैं मूर्ख हूं, मैंने कविता लिखी। और जब रामचंद्रिका प्रकाशित हुई, ऐसी लोकश्रुति है मुझे पता नहीं कि वो भारत के 32 महाजनपदों में राज्यों में सोने के कवर में भेजी गई थी बंद करके कि ये महाकवि ने, हमारे ओरछा के कवि ने कविता लिखी है। और गोस्वामी जी को बनारस के शुद्धतावादी वैयाकरणों ने, पंडितों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। आज हिंदी को गर्व होना चाहिए, पूरी दुनिया में हिंदी अकेली जबान है, मैं अहंकार में नहीं कह रहा, जो 24 घंटे गाई जाती है, रात को 12 बजे यहां दिन छिप जाता है। कैलिफोर्निया में किसी सात्विक के घर पर एक कंप्यूटर बजना शुरू होता है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन शरण भव में हरनाम, चाहे धर्म के कारण बज रहा हो, तो कम से कम भाषा का सम्मान हो रहा है, हिंदी का सम्मान हो रहा है कि मेरी कविता की किताब भगवान के पास रखी हुई है, जहां ईश्वर रखे हुए हैं वहीं रखी हुई है। सो इसलिए शुद्धतावादियों ने कहा कि ये क्यों आ रहे हैं, उसके तीन कारण थे उर्दू के शायरों को बुलाने के। एक तो शुद्ध व्यावसायिक कारण था
जी,
कि हिंदी के बड़े खलीफा मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे नहीं नहीं इसके साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा करता है वैसा करता है, पता नहीं क्या क्या बहाने थे। वो जो शेर और मेमने वाला होता है कि तू मेरा पानी बिगाड़ रहा है, उसने कहा जी मैं तो नीचे पी रहा हूँ, फिर तेरी माँ ने बिगाड़ा होगा, इस तरह के बहाने थे उनके मेरे खिलाफ। दूसरे वो महंगे बहुत थे, पैसे बहुत मांगते थे, मैं संयोजन कर रहा था जी। तो मैंने उर्दू से लोग बुलाना शुरू करे, डॉक्टर बशीर बद्र, निदा फाजली, मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब। इसके तीन फायदे थे। एक फायदा तो था कि शायर सस्ता आ रहा था,
अच्छा।
पैसे कम थे, जितने में हिंदी का खलीफा आ रहा था उतने में तीन शायर आ रहे थे। दूसरा यह था कि जो हिंदी में चुटकुलेबाज मंच पर थे, जो आवश्यकता थी मेरी, वो कॉम्प्लेक्स बैठे रहते थे कि यार ये इतनी अच्छी शायरी कर रहा है, इसने इतना अच्छा शेर कहा है। जैसे हमारा एक नया शायर था जिसे मैंने बहुत यूज किया, इकबाल अशर, वो शेर पढ़ता था कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई, ताली बस्ती थी, खूब अच्छा लोग प्रसन्न करते थे। फिर हमारा वो चुटकुलेबाज आता था, मैंने पड़ोसी से होकर हैरान कहा श्रीमान अब तो मुस्कुराइए मेरे घर में आ जाइए, तो उसको लगता था यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लिखना चाहिए। तो एक तो उसमें लिखने की प्रवृत्ति, और उसमें एक हीनता बोध आता था कि ये चुटकुले लेके तू मंच पे आ तो गया है अपना नाम बिच्छू विच्छू रख के, लेकिन ये असली कविता तो ये हो रही है। दूसरा, दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा ये होता था कि वो जो मंदिर बना रहे थे रात को और वो जो मस्जिद बना रहे थे, वो दोनों लाइन में रहते थे। उनको लगता था कि हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी जिससे पैसे लेने हैं बाद में, कुमार विश्वास, जब वही राहत भाई के पैर छू के कह रहा है कि गजल की आबरू, लफ्जों की आबरू, मेरे बड़े भाई राहत भाई आ गए हैं, तो भैया तू भी नमस्ते कर, तू भी कह राहत भाई बैठे हैं, राहत भाई बैठे हैं। तो एक तमीज बनी रहती थी, रात भर संस्कार बना रहता था। तो इसका हिंदी वालों ने बड़ा विरोध किया, हमारे पैसे उर्दू को क्यों दे रहा है तू, ये हमें कहां बुलाते हैं, ये हमें कवि कम मानते हैं। मैंने कहा लिखने लगो मानने लगेंगे, अभी लिख नहीं रहे हो मान नहीं रहे, इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर धीमे धीमे दोनों जगह चलने लगे, उर्दू वाले भी जाने लगे, हिंदी वाले भी जाने लगे। अब आज इंदौर में दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा कवि सम्मेलन ये लोग कराते हैं, एक दुबई में होता है, उसमें हिंदी वाले भी आते हैं, हमारी एसोसिएशन वाला, और इनके दो सबसे बड़े कवि सम्मेलन मुशायरे हैं जो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, जिसमें लोग टिकट लेके आते हैं कनाडा वनाडा कहां से सुनने आते हैं। ये दोनों में हिंदी उर्दू के लोग होते हैं
और दोनों की निजामत कुमार विश्वास करते हैं, ये हम सब जानते हैं। ये जो कमर्शियलिज्म का आरोप आपके ऊपर हमेशा लगता रहा है कि आपने कवि सम्मेलनों को, मुशायरों को बैंड पार्टी बना दिया, ऑर्केस्ट्रा बना के रख दिया, कॉन्सर्ट में तब्दील कर दिया, इन शॉर्ट, ये कितना सही है और आप कितना अपने ऊपर ये इल्ज़ाम स्वीकार करते हैं?
नहीं, ये तो सही है कि वो कंसर्ट बन गए। अब जैसे एक जगह है साहब NIT त्रिची दक्षिण में
जी,
एक मुझे याद आता है NIT दुर्गापुर, मैंने 5 साल पहले शो किया तो NIT दुर्गापुर के साहब पैसे कम ले लो, यहाँ तो हमारे यहाँ बांग्ला लोगों का बहुत वर्चस्व है और वो हिंदी के कवि को आने नहीं देना चाह रहे। तो उन्होंने कहा को भी हिंदी का, को भी हिंदी का को भी कौन सुनता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप उनको अगर जाके सुनाने लगो असाध्य वीणा, तो उनको सुनाने के लिए मैंने एक काम शुरू किया कि यार इसको थोड़ा म्यूजिकल बनाओ।
ओके,
क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो ये संगीत तो समझेंगे, और संगीत जब तरलायित कर देगा इनके कानों को, इनकी इंद्रियों को, इनकी समझ को, और हिंदी के प्रति ने थोड़ा स्नेहिल बना लेगा, थोड़ा लुब्रिकेट कर देगा, फिर मैं अपनी बात कह लूंगा इनसे। तो मैंने जुमलों के सहारे, थोड़ी टिप्पणियों के सहारे, थोड़े हंसाने के फ्लेवर के सहारे गा के धीमे धीमे मैंने, अब जैसे बादड़ियों का गरिया भर दे या हम है देसी हम अगर हर देश में छाए हैं, मैं गा रहा हूं, अब वो बैंड भी बज रहा है हम है देसी, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा आयंगर के, पर वो भी नाच रहा है हिंदी वाले के साथ, कौशिक के साथ, क्या मजा आ रहा है फर्स्ट क्लास। फिर जब उसने घर में जाके वीडियो सुना तो उसकी समझ में आया कि अच्छा ये बात कह रहा था कवि। तो इससे कुनबा बड़ा हुआ, हिंदी का परिवार बड़ा हुआ। और अगर हिंदी वाले यहां बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको दक्षिण में पढ़ा जाए, तो आपके लिए भी आवश्यक है कि आप भी तिरुवल्लूर को पढ़ो और आप तिरुवल्लूर की भाषा का प्रशंसा करो। क्योंकि हम बात तो करते हैं हिंदी अंग्रेजी के सामंजस्य की, हमारी देशी भाषाओं में सामंजस्य नहीं है। हिंदी में एक बड़ा सा वर्चस्व बोध है, बड़ी माँ का, कि छोटी मौसियां या गरीब घरों में ब्याई गई हैं, ये क्या बात है भाई। आप देखिएगा कि क्या बढ़िया बढ़िया बुंदेली में लिखा जा रहा है। मैं ट्रेन में जा रहा था कारगिल के टाइम में, बड़ी बड़ी कविताएं लिख रहे थे लोग। हिंडौन में एक कवि सम्मेलन था, दिल्ली से बैठा, टिकट ठीक से मिला नहीं तो मैं जनरल में चढ़ गया। वहां भीख मांगने वाला आया साहब, उसने दो उपमाएं ऐसी कही जो हिंदी में कारगिल के समय युद्ध के लिए लिखी गई है, जागरण के लिखी गई कविता मैंने सुनी नहीं है, बाकी लोगों ने सुनी हो तो पता नहीं। उसने सुनाया, मैया तेरे बेटा एक ते बढ़ के एक निकर गैरी, माँ तेरे बेटे एक से बढ़ के एक। अब आप सबको पता है कि टाइगर हिल पर झगड़ा हुआ था, टाइगर हिल हमने जाया था, अब उसने टाइगर शब्द में श्लेष लगाया, हिंदी के प्रेमी लोग इस पर दाद भी देंगे और तालियां भी देखेंगे। देखिए कि मैया तेरे बेटा एक ते बढ़ के एक निकर गैरी, एक निकर गैरी, मैया तेरे बेटा एक ते बढ़ के एक निकर गैरी, मूड़ हाथ में लई के सिर, मूड़ हाथ में लई के टाइगर हिल पे चढ़ गैरी, मैया तेरे बेटा एक ते। वो एक भीख मांगने वाला है, वो हिंदी के 50 अकादमी पुरस्कारों से बड़ा है, जो अपनी बात कह रहा है, जो कह रहा है कि हमारे टाइगर टाइगर हिल पर चढ़ गए, और उसे पता है कि दो बार शब्द इस्तेमाल नहीं करना। वो क्लास में नहीं गया श्लेष पढ़ने के लिए, वो क्लास में नहीं गया इसके व्याख्याओं के लिए, लेकिन उसे पता है। तो मैंने तो जितने पैसे थे जेब में, जो कुछ बच सकते थे, मैंने उसे सब दिए, 3-4 बार सुना। तो तात्पर्य इसका यही है कि मैंने संगीत इसलिए डाला उसमें, और ये तो अच्छा हुआ कि वो कौन, हमारे बॉब डिलन साहब, उनको नोबेल मिल गया, थोड़ी लाज बच गई, वरना हिंदी वाले मैं कई जानता हूँ, कई हिंदी वाले कहते हैं अच्छा वो ऑर्केस्ट्रा वाला कवि। ऑर्केस्ट्रा वाला कवि का मतलब इतना है कि अगर इंदौर में तो चलो कविता सुना लो, बड़ी परंपरा है, सरोज कुमार जी, सारे लोगों ने, शरद जी यहाँ आते रहे, और सत्तन जी, तमाम लोगों ने इतना काम किया कवि सम्मेलनों में। अब फिजी में जो हिंदुस्तानी है या फिजियन है, वो 3 पीढ़ी पहले भारत से आया है। अब वो हिंदी अजीब सी बोलता है, लेकिन वो मानस पढ़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है, सब कुछ उसके अंदर हिंदुस्तान है। अब उसे मैं अगर ये सुनाने लगूं अपनी कविता, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो, है ना, विगत का ताप घटता जा रहा है तुमको सूचित हो, उसने कहा तू ही जा, विगत का ताप छोड़। तो अब उसको आपको थोड़ा बहुत संगीत में थोड़ा गा के कुछ सुनाना पड़ेगा, तो एक कर देता हूँ। अब इतनी सारी तोहमतें हैं तो एक तोहमत और सही का ऑर्केस्ट्रा वाला क्या फर्क पड़ता है।
अच्छा एक बात बताएं आप, आपने खुद भी माना कि मुशायरों को, कवि सम्मेलनों को आपने थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेट किया, थोड़ा सा उनको कॉन्सर्ट्स में बदला, लेकिन फिल्मी गीतों से आप इतना दूर क्यों भागते रहे?
एक तो कोई मतलब मैंने एक दिन से पहले दिन से एक बात सोची, और मैं आपको, आपको और इरशाद को, मेरे दोनों बहुत प्रिय गीतकार हैं आप लोग, आप सबको मैं इस बात की बधाई दूंगा कि आप वहाँ पांव जमाए हुए हैं। साहिर पहले आदमी थे जिन्होंने इस बात को आगे बढ़कर प्रोड्यूसर से कहा कि जहां नाम छपेगा संगीतकार का, वही मेरा नाम छपेगा, गाना लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। और साहिर ने दिलवाया, साहिर ने इज्जत दिलवाई।
बिल्कुल,
आप पुरानी फिल्म में आप 60 के दशक की देखिए, आता बी आर चोपड़ा के यहाँ साहिर लुधियानवी, फिर आता संगीत रवि।
बिल्कुल।
सो एक तो ये रहा कि मैंने पहले दिन से तय किया कि मैं कविता का बाजार बनाऊंगा, बाजार की कविता नहीं लिखूंगा।
वाह 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 वाह।
तो जिंगल आए लिखने के लिए।
अच्छा,
अब भाई अभी तो ठीक चल रही है दुकान, अच्छा खासा इनकम टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। नहीं भी होता तो भी ये नहीं कर सकते कि अपन ये लिख दें कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा मैं तेरी शालू, क्या है। अब अच्छी बात है, चलो ये भी होता है, अच्छा ही ठीक ठाक हो आने वाले कल में, क्या पता यही किसमें अकाडमी में पुरस्कार ले जाए, आजकल यश भारती ऐसी बढ़ रहा है तो। लेकिन ये लिखा नहीं जा सकता था।
मैं एक फिल्मों का गीतकार हूं, और मुझे हमेशा ये गलतफहमी रही कि अगर आपको इस देश में अपनी पोएट्री पॉपुलर करनी है तो आपको सिनेमा का सहारा लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आज मैं समझता हूँ ये तथ्य के तौर पे हमारे सामने है कि कोई दीवाना कहता है कि जो पॉपुलैरिटी है वो लोकगीत की है, मैं फिल्म गीत की भी बात नहीं कर रहा। जैसे लोकगीत पॉपुलर होते हैं वैसे कोई दीवाना कहता है पॉपुलर। आपका और विरोध का जो एक रिश्ता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि 2-4 महीना निकल जाए जब हम कुछ सुने ना आपके बारे में?
इस तो मेरी भी बदतमीजी आ रही हैं
कुछ।
देखो वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं है। और कुछ लोगों ने भी ऐसा किया। 3-4 चीजें रही
जी।
एक तो कस्बाई रहा मैं, है ना
जी,
और दूसरा मैं एक अध्यापक का बेटा रहा, कुटा पिटा बहुत
जी।
तो विरोध इसलिए रहा कि कवि सम्मेलन में रहे तो उनको समझाना बहुत मुश्किल पड़ा। 24-25 लोगों ने लिख के भेज दिया कि ये आएगा तो हम नहीं आएंगे, जबकि कवि सम्मेलन जमात का एक भी व्यसन मेरे अंदर नहीं था जो तथाकथित व्यसन था।
जैसे
जैसे कवि सम्मेलन शाम होते ही भीग जाते थे सुरा में, मैं टी टोटलर हूँ, अदरक की चाय से आगे अपनी लिमिट ही नहीं गई। मैंने कोई अश्लील बात नहीं पढ़ी कविता में
जी।
मैंने कोई सांप्रदायिक बात नहीं पढ़ी कविता में। मैंने मीटर से बाहर कविता नहीं पढ़ी। मुझे पता नहीं कहीं गलती एकाध हो गई हो, मात्रा की तो हो गई हो, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैंने जो लिखा वो मीटर में है, वो गजल हो चाहे गीत हो उसमें मीटर पूरा है। फिर ये संगीत के प्रयोग में विरोध हो गया, फिर आंदोलन के टाइम में विरोध हो गया, कांग्रेस की सरकार थी तो हम उनके ब्लू आइड नहीं बचे, अरे भाई, किसके खानदान में पैदा हुए ये तो सोचो। हम खानदान में किसके पैदा हुए? पंडित वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के, जिसने नेहरू पर लिख दिया, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। जिसने 77 में इंदिरा जी के लिए लिख दिया, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता पाते ही भूल गई बाप को, बेटे को ताड़ दिया भूल गई बाप को, सत्ता की मस्ती का मस्का लगा आपको, किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको। जिन्होंने राजीव गांधी के ऊपर लिखा, राजीव राइम, झुंझुनू में मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में गया, बीए में पढ़ता था, बाबा आए थे उसमें, बाबा ने पढ़ी राजीव राइम, राजीव जी बोलते थे हमने देखा है हम देखेंगे, ऐसा बाबा ने कविता लिखी राजीव राइम, तुमने देखा तुमने माना मेरे मम्मी मेरे नाना, राजीव जी। अब उनके घर में पैदा हुए।
तो मैं एक बात सचमुच आपसे जानना चाहता हूँ कि आप वाकई फिल्मी गीतों में साहित्य का कोई भविष्य देखते हैं कि देखते ही नहीं हैं आप?
नहीं सर, बहुत देखते हैं। और मैं बताता हूँ, देखिए बुरा ना माने लोग बाग, मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो प्रोफेसर मुझसे लड़ जाते थे, कहते थे पढ़े लिखे आदमी हो के तुम जो है आनंद बख्शी की तारीफ करते हो। मैं बख्शी अंकल से लास्ट के दिनों में मिलकर आता था, जब वो बेड पर थे और उत्तम सिंह जी नीचे बैठे रहते थे उस कमरे में, और वो कौन सी फिल्म थी, मैं उत्थे दिल छोड़ा, गदर के गाने कर रहे थे बख्शी अंकल, तब मैं उनसे मिलता था, उनसे हुक सीखता था। मुझे बताते थे पुत्र गाने विच एक हुक होना चाहिए, हुक। मैंने उनसे पूछा कि अंकल हुक क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हुक ऐसा होता है। हाँ यार, इसको तो आने दो, चाय वाले को मत रोको, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए।
जी, तो मतलब आपको इस बात की पूरी
बहुत अच्छा। सर देखिए, बख्शी अंकल ने कैसे कैसे प्रयोग करे
जी,
वीर रस की कितनी कविताएं लिखी गई हैं। जब लड़ाई होती है तभी तो अच्छा। देखिए, माँ कब आपसे कहती है कि काम आइए, माँ कभी थोड़ी कहती है, माँ को जरूरत पड़े और काम ना आए तब उसे लगता है कि यार मैंने बेटे इसलिए पाल पोस के। उनका एक गाना है, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे कि उसके बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए।
वाह 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 वाह,
ये बख्शी अंकल का गाना,
आक्रमण फिल्म का।
हाँ, अरे हिंदी फिल्मों में तो इतना अद्भुत काम हुआ है, और अभी भी आपने जो काम किया है उसमें नए नए मुहावरे हैं। कविता कौन सी सक्सेसफुल है साहब? कविता वो सक्सेसफुल है जो मुहावरा बन जाए। आज हमारे सबसे प्रासंगिक कवियों में मुक्तिबोध हैं, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, सब बोलते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में पर मुक्तिबोध हमारे बहुत आदरणीय है
जी,
है ना। हमने भी अंधेरे में और भ्रम राक्षस कंठस्थ कर रखी है, हम भी उसे सूक्त की तरह श्लोक की तरह गाते हैं आंख बंद करके, ले प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम गोपाल दास नीरज को इसलिए खारिज कर दें कि वो पैसे लेते थे, उनका भी मुहावरा है भाई जरा देख के चल, उनका भी मुहावरा है कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उनका भी मुहावरा है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। तो जो मुहावरा दे पाए कविता का, जो जनभाषा बना ले कविता को, उसकी बातों को लोग उसी तरीके से सामान्य रूप से इस्तेमाल करने लगे बिना ये जाने। जैसे हमारे यहाँ दास परंपरा के कवि हैं दौसा राजस्थान के
जी,
उनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, कहाँ पैदा हुए कब मरे। उनकी एक पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका
कह गए सबका दाता राम।
ये पूरे भारत को याद है
yeah।
इसका मतलब दास मलूका की वो जो एक दोहा है वो उन महाकवियों पर भारी है जो ज्ञान से पीट करके बैठ के ज्ञान पीट ले रहे हैं।
दीवाने गालिब का जो सबसे मशहूर शेर है, सबसे मशहूर शेर, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये डॉक्टर साहब भी जानते हैं और आप सब जो यहाँ बहुत बड़े मूर्धन्य लोग बैठे हैं, कि पहला मिसरा दिले नादा तुझे हुआ क्या है यही बहर से खारिज है, उसमें आधे ला की जगह और थी दिले नादा।
मेरा कहना यह है मनोज मुंतशिर भाई के, शायर और कवि होना ही पहले बहर से खारिज होना है। जो लोग दुनिया की बहर में हैं वो शायर हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि अपने अंदर एक अतृप्त आदमी बैठा हुआ है। हम सब लोग अपने अतीत के गुलाम हैं, हम शापित लोग हैं पृथ्वी पर भेजे हुए, हमारी बेचैनियां हमारी सृजनात्मकता हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा च मही पति। द्विज मतलब पढ़ने लिखने का काम करने वाला, मनुवादी बात नहीं कह रहा। अगर आप संतुष्ट हो गए तो खत्म हो जाएंगे, आप गीत लिख दिया फाइनल लिख दिया, अब इसके बाद लिखना ही नहीं। आपको लगा जिस दिन लिखो उसके 5-6 दिन तो उसके खुमार में रहता है आदमी, आहा हा क्या लिख दिया, उसके 3-4 दिन बाद याद आता है। और अगर आपने पढ़ाया जैसे मैंने इतने दिन पढ़ाया, जब मैं नीचे उतरता हूँ और मुझसे कोई ये कहता है जी आप बहुत महान कवि हैं, तो मैं दो बातें समझता हूँ, या तो ये मेरा मूर्ख बना रहा है या खुद है, क्योंकि महान वहान का अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कोशिश जारी है, लिखा जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा ऊँट हूँ जो रोज पहाड़ के नीचे से निकलता हूँ। आज तो ये मिल गए मुझे सामने जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, चाहे हमारी आदरणीय माँ बैठी हूँ ममता जी, मेरा मेरे प्रति बहुत स्नेह है इनका, मैं पहली बार मैंने देख रहा हूँ, इन सबको मैं पढ़ता हूँ, पर अगर मैं ये एंडोर्समेंट्स करने लगूं, अपने 3.5 मिलियन के पेज पे डालने लगूं, तो चार इंच से चढ़ने वाली कथाकार मुझे इनबॉक्स में लिखेंगी, व्हाई यू आर प्रमोटिंग महुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये इसलिए पढ़ता हूं, सबको पढ़ता हूं, लेटेस्ट कवियों को भी पढ़ता हूं, और जितना बाहर प्रस्तुत कर पाता हूं उन्हें उल्लेखित भी करता हूं। मुझे बहुत सारे कवियों की तो पूरी पूरी कविताएं याद हैं, जो हमारी मुख्य धारा के कवि हैं उन सबकी, गंभीर पालनी ज्ञानेंद्र पति जैसे कवि की, चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो, अब भी करती हो जिसे प्यार उसे दाढ़ी रखाती हो, लाइब्रेरी के छूटे नहीं चक्कर, मुझ जैसे घुमंतु कवि से हुई कभी टक्कर, ये उनकी कविता थी, बनानी बनर्जी, ये याद है बहुत सारी कविताएं।
दुनिया कुमार विश्वास की दीवानी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कुमार विश्वास किसे फॉलो करते हैं, किसे, मैं आदर्श तो नहीं कहूँगा लेकिन किसके नक्शे कदम पर चल के उन्हें कुछ दूर अच्छा लगता है चलना।
कुमार साहब के साथ मंच शेयर किया, रामावतार त्यागी, रामानंद दोषी, रामानाथ अवस्थी, सो न सका मैं याद तुम्हारी आई सारी रात, और पास ही कहीं बजी शहनाई सारी
आए, हाय हाय,
रामानाथ अवस्थी, मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, भोपाल का एक कवि सुना, 3 दिन तक उसके सुरूर में रहा मैं, रमेश यादव, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, चांदनी रात का कवि सम्मेलन था मंडी बामौरा में, और बड़े बड़े तोप आए हुए थे, मैं संचालन कर रहा था, 1996-95 की बात होगी, नौकरी मैंने शुरू की थी गवर्नमेंट कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ ही हुआ था, क्या गीत सुनाया उसने, शरद कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा थोड़ा पीला पीला होता है, और उसने गीत सुनाया, ये पीला बासंतिया चांद, ये पीला बासंतिया चांद, चंदा ने कभी रातें पीली, रातों ने कभी पी लिया चांद, ये पीला बासंतिया चांद, आपके अंदर तक गया, तो जरूरी थोड़ी है, अभी हमारे यहाँ पूछो, हिंदी फिल्म मेकर से पूछो कि तुम किससे प्रभावित हो, तो वो एक इजरायली फिल्म लेखक फिल्मकार का नाम बताएंगे, फिर अगला स्पेनिश बताएंगे, और बताएंगे और स्पेनिश है, और रात को देखो तो वो साउथ की डब फिल्म देख रहे होंगे उनके कमरे में, तो इस नौटंकी का क्या मतलब है कि भाई आप इससे प्रभावित हो। कालिदास से बहुत प्रभावित हूँ, अद्भुत मुग्ध हूँ, अंदर तक हिल जाता हूँ जब जब मेघदूत पढ़ता हूँ, अब क्या अद्भुत शब्द लगाया, उज्जैन के पास बैठा हूँ, महिलाओं में बिल्कुल भाई मुकदमा ना हो जाए यार, प्रवीण जी देख रहे हैं, महिलाओं में एक विशेष जाति होती है प्रेम में मानिनी की, नखड़े बहुत करती है, बहुत ज्यादा, और उसके लिए एक शब्द कालिदास ने ऐसा लगाया जो उन्होंने ही लगाया, यक्ष जब बैठ के वहां अपनी प्रिया को याद कर रहा है जो नेपाल में अलकापुरी में रही होगी, तो वो ये कहता है कि यार मैं सरगुजा के इस पर्वत पे बैठा हूं तो मैं हर जगह से तुझे देखता हूं, वो कहता है कि ये नदी मुड़ती है तो इसमें मैं तेरी कमर देखता हूं, ये जो मोर चलता है इसके बालों में मैं तेरे केश देखता हूं, उत्पश्यामि प्रतनशु नदी विचशु भ्रू विलासान, और फिर कहता है हंतई कत्र न क्वचिदपि चंडी सादृश्यमस्ति, मैं अलग अलग जगह तुझे देखता हूं, श्यामा स्वंगम चकित हरिणी, श्यामा के बोलने में मैं तेरी आवाज सुनता हूं, चकित हरिणी प्रेक्षणान निम्न नाभि, जब हिरणी इधर उधर देखती है तेरी आंखें देखता हूं, लेकिन हे चंडी मैं तुझे एक साथ इकट्ठा नहीं देख पाता हूं और इकट्ठा देखना चाहता हूं, तो क्या शब्द लगाया चंडी अद्भुत, या एक पंक्ति में जब दुष्यंत ने अपने बेटे भरत को उठाया गोदी में और वो रोने लगा, शेर के दांत गिनना था, अंदर से शकुंतला निकल के आई और वो कह रहा है मां से कि मां मुझे छुड़ाओ, ये कौन अपरिचित है इसने मुझे गोदी में ले लिया, मां तो पहचानती है कि पति है मेरा मुझे छोड़ के चला गया था, एक वाक्य है मन से जिस दिन पढ़ लोगे मनोज मुंतशिर उस दिन आप भी रोगे, सोच के देखिए शकुंतला का कष्ट, एक वन बाला, एक पायस प्योर लड़की जिसकी जिंदगी में पहले पुरुष ने प्रवेश किया और उसी ने उसे धोखा दे दिया, गंधर्व विवाह करा, आग जला के और गर्भवती करके चला गया, और वो बाद में पता चला राजा है और वो तपस्विनी की तरह अपना जीवन बिता रही है, अपने बेटे को पाल रही है, भारत का मुस्तकबिल पाल रही है, जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा उस भरत को पाल रही है, जो शेर का जबड़ा फाड़ के सिंघिनी के सामने उसके दांत गिनता है, और उसके सामने दुष्यंत आ गया, दुष्यंत ने गोदी में ले लिया, आप फिल्मों में काम करते हो, सीन को कोई बना नहीं सकता, इस डायलॉग को कोई नहीं बना सकता जो कालिदास ने बनाया, जब वो पूछता है कि माँ ये कौन है, तो माँ कहती है वत्स ते भाग धेया निपृच्छ, बेटा मुझसे मत पूछ, अपने भाग्य से पूछ के ये कौन है जिसकी गोदी में थे, क्या अद्भुत काम है, तो मैं कालिदास पर मुग्ध हो जाता हूँ, मैं कीट्स पर मुग्ध हो जाता हूँ, कीट्स ने क्या बढ़िया ओड टू नाइटिंगेल में लाइन लिखी है, वेर यूथ ग्रोस पेल स्पेक्टर थिन एंड डाइज, वेर ब्यूटी जस्ट नॉट कीप इट लश्यस आइज, और एक कविता लिखी है जो हिंदुस्तान पर इस समय सटीक है, वेयर बट टू थिंक इज फुल ऑफ सॉरो, सोचना शुरू करो और दुख होना प्रारंभ हो जाएगा, कष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, सोचोगे नहीं तो सब मजे में आ जाओगे, अब्बास ताबिश का क्या शेर है कि हालत हिज्र में जो रक्स नहीं कर सकता उसके हक में यही जायज ही कि पागल हो जाए, क्योंकि सोचने लगोगे तो मर जाओगे, तो कीट्स प्रभावित करता है मुझे, सूर प्रभावित करते हैं, महाप्राण निराला आहा क्या बात है वो प्रभावित करते हैं, अभी मैं महादेवी तैयार कर रहा था, मैंने पीड़ा में इतनी आत्ममुक्त महिला नहीं देखी। अपने विरह में, अपने कष्ट में जो दीप्ति है उनमें, जो अहंकार है उनके अंदर इस बात का, जो स्वाभिमान है कि मेरे अंदर जो पीड़ा मिली है दुनिया से वो मेरी निजी है और उसी के बल पर मैं हूं, तो मैंने उन्हें पढ़ते में भी मैं रोया। अभी मैंने भवानी दादा रिकॉर्ड किए, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, शरद जी के साथ तो कितना पड़ा भवानी दादा ने, मैंने भी उनको नीचे बैठ कर सुना। याद आता है भवानी किस लिए है, आज पानी माँ ने पूछा होगा। वो जब मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं रिकॉर्डिंग बे में था, हमारा एक असिस्टेंट है जो हमारा काम देखता है रिकॉर्डिंग का, सुमित, वो लड़का राजस्थान से है, दिल्ली में आके नौकरी कर रहा है मेरे पास। एक हमारे और परिचित बैठे हुए थे, वो उत्तरांचल के हैं, गाजियाबाद में नौकरी करते हैं। मैं कविता रिकॉर्ड करते हुए रो रहा था, वो दोनों से रिकॉर्ड करते हुए उधर रो रहे थे, हम तीनों रो रहे थे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने बम्बई में लिखी थी ये कविता। तो भवानी दादा, तो जो मिल जाता है, जहां से मिल जाता है, सबका कुछ ना कुछ उधार है तो सबका आभार है। जैसे मंच के कवियों में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों के नाम नहीं सुने होंगे
जी।
जैसे मेरे गाँव में कवि थे जगपाल सिंह सरोज, अद्भुत कवि थे, प्राइमरी स्कूल में काम करते थे तो, और मेरे पिताजी के पास आ जाते थे और कहते थे गुरुजी एक नया गीत लिखा है। हमारे पिताजी कहते थे आइए आइए सरोज जी आइए, अरे बेटा जरा सरोज जी के लिए पानी लाओ, अपनी माँ से कहो चाय बनाएगी। तो हम पानी लेके चाय बनाने के बहाने वहाँ बैठक के बाहर कान लगा देते थे। उन्होंने सौंदर्य वर्णन किया एक लड़की का, एक नायिका का, मैंने वो कविता पूरी दुनिया में पढ़ी, यहाँ के लड़कों को याद होगी 200% मैंने संचालनों में पढ़ी
जी।
देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीते। अगली दो पंक्तियां साहित्य के गंभीर विद्यार्थी जो यहाँ हैं, जो मंचीय कविता को थोड़ा सा ये समझते होंगे कि वहाँ गंभीर काम कम हो रहा है, के सामान्य कवि की भाषा समझिए। देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी। एक रोज सपने में छूकर, सपने में, उर्दू से आगे का काम है, हमने तो बोसा लिया था ख्वाब में तस्वीर का, इससे आगे का। एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन मन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगा। उन्होंने ही जब साहित्यिक मर्यादा का गीत लिखा तो उन्होंने यह कहा कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, शायद ये जो पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं ये यहां बैठे लोगों को तो मजा आएगा, तारिक फतेह साहब को सब ज्यादा मजा आएगा। जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। ये हमारे कवि की कविता है। शिशुपाल सिंह निर्धन खुर्जा के कवि थे, नंगला मोहिद्दीनपुर उनका पता होता था, मैं चिट्ठी लिखता था, क्या बढ़िया कविता उनकी थी। एक उन्होंने लिखा कि एक पुराने दुख ने पूछा क्या तुम अभी वही रहते हो। आपकी दाद मिले उस कवि के लिए। एक पुराने शिशुपाल सिंह निर्धन, नाम याद रखना, मैं पिंडदान करता चल रहा हूं अपने पूर्वजों का। एक पुराने दुख ने पूछा क्या तुम अभी वही रहते हो, मैंने कहा चले मत आना, मैंने वह घर बदल दिया है। एक पुराने दुख ने पूछा। एक कवि कोटा में थे, जयपुर में हाईकोर्ट में जज थे, अभी भी हैं, शिव कुमार शर्मा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे, कुमार शिव, नवगीत के समय धर्मयुग में उनको भारती जी ने बहुत छापा, ममता जी को याद होगा, नईम साहब छपते थे, नचिकेता छपते थे, तो कुमार शिव छपते थे
जी।
कितने अद्भुत प्रतीक लेके आए वो नई कविता के नवगीत में। उनका एक गीत मुझे याद आता है, तुमने छोड़ा शहर धूप दुबली हुई। साहित्य के लोगों, तुमने छोड़ा शहर धूप दुबली हुई, पीलिया हो गया है अमलतास को तुमने छोड़ा। उनको सुनता, उनके साथ रहा बहुत दिन, उनको सुना ध्यान से। हाड़ौती के कवि दुर्गा दान सिंह गौड़ फौज में नौकरी करते थे, कभी बुलाइए आप, आंचलिक कार्यक्रम कराइए। तो उन्होंने सौंदर्य वर्णन के अद्भुत गीत लिखे। तू अदरी खूब खुले छे, पानी में चांद घुले छे, तेरी चाल असी है मिजाजन मानिनी, तेरी चाल असी है मिजाजन, थाली में मूंग रले छे, तू अतरी खूब खुले छे। जैसे थाली में मूंग का दाना जाता है ना, यूं यूं गोल गोल उठता नहीं है, यूं यूं ऐसे चलती है। तू अतरी खूब खुले छे, पानी में चांद घुले छे। भारत भूषण जी को सुना, उनके साथ रहा, बहुत दिन उनकी अटची उठाई रोडवेज की बसों में। पंडित कहाँ का टिकट ले आओ जाओ पैसे लेके हमसे। मैं लेके आता था टिकट रोडवेज की बस में उनका, फिर वो सीनियर सिटीजन वाला बनता था और साथ में जाता था। क्या गीत, यह असंगति, यह असंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई। मेरा एक छोटा प्रयास ये भी है आज की शाम कि हिंदी की मुख्य धारा के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, सादर प्रणाम करके चरण स्पर्श करके कहता हूँ, हम इतने त्याज्य नहीं हैं, इतने खराब नहीं हैं, हमारी चुटकुलेबाजियों को थोड़े दिन के लिए माफ करिए, बड़ा होके हमें दिल से लगाइए, क्या पता आपको ज्यादा जनता मिल जाए, क्या पता हमको ज्यादा कविता मिल जाए, एक माहौल आज आज अगर ऐसा हो जाए।
आपकी तालियां चाहिए मुझे इनके समर्थन में अगर ये सच कह रहे हैं तो।
यह असंगत जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई। अब पंक्ति देखना आप, यह असंगत जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, यह असंगत जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई।
सोम ठाकुर,
गिर गया हूं किसी बेसुरे मोड़ पर, गिर गया हूं किसी बेसुरे मोड़ पर, बांसुरी की लहर से उठा लो मुझे, रोशनी के लिए मैं परेशान हूं।
2000 के लिए लाइन में लगे हुए लोगों अब दाद देना।
रोशनी के लिए मैं परेशान हूं, इस अंधेरी गली से निकालो मुझे, गिर गया हूं किसी बेसुरे मोड़ पर।
कुंवर बेचैन, किशन सरोज, माहेश्वर तिवारी,
हम सब भारतीय दाम्पत्य जीवन के लोग विदेश में जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे हम शादी की 10वीं सालगिरह मनाते हैं, वो विदेश वाले 10वीं पत्नी की मनाते हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि यार एक ही महिला के साथ आप ऐसा समय कैसे काट देते हैं। माहेश्वर तिवारी ने महिलाओं के, मेरे पिताजी से कोई लड़की हमारे दोस्त की पत्नी पैर छुए ना, अंकल नमस्ते, पूछे बेटा क्या करती हो तुम, अंकल मैं तो हाउस वाइफ हूं, तो कहते नहीं हाउस वाइफ मत करना, तू होम मेकर है, घर बनाती है, इसने तो मकान बनाया, तू घर बनाती है। सो जो घर में रहती है मेरी माँ, उसने कोई तरला दलाल का कोर्स नहीं करा ना, उन्होंने संजीव जी की क्लास देखी, लेकिन मुझसे बात करते करते भी मसालदानी में से वो कड़ी बनाते समय यूं चुटकी लेके जो डालती है ना हल्दी, ना ऊपर जाती है एक एमएम, ना ही नीचे जाती है एक एमएम, वही स्वाद आता है। ये साधना है जो सद गया है, जो उसके हाथ में आ गया है, जो लाख झक मरा के मेरा कुक नहीं कर पाता, जो वही करती है। तो क्या बढ़िया गीत माहेश्वर जी ने लिखा, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है,
सारी महिलाओं को समर्पित,
एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, एक तुम्हारा होना।
तो इनके साथ समय बिताया खुमार बाराबंकी साहब,
नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है,
जिन लोगों ने सुना होगा खुमार साहब को,
यही अंदाज
ऐसे पढ़ते थे,
सिग्नेचर अंदाज है उनका बिल्कुल।
नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है, नहारा है इश्क और न।
कुमार साहब के साथ पढ़ा, निदा फाजली साहब जब भी फोन करते फाड़े हुए हो डॉक्टर, बशीर बद्र साहब, मनोहर भाई, सब बड़े लोगों के साथ सफर करा, उनको उनके साथ अनुभव जिए। और हिंदी में एक शब्द है उपनिषद, उपमाने पास निषद माने बैठना, जो उर्दू में है भी है उस्ताद परंपरा, उर्दू में बड़े से बड़ा शायर है उसका एक उस्ताद भी होता है, तो हिंदी में जो उपनिषद है वो मैंने काफी जिया, और आज भी मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे लोग जो हैं, मैं कुछ बड़े लोगों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो बात ऐसी रहती है, मैं अब भी शाम को या तो चला जाता हूं या उन्हें आमंत्रित कर लेता हूं, उनके किस्से कहानियां सुनता रहता हूं। आखिरी दिनों में प्रभास जी के पास बहुत बैठता था, प्रभास जी वहीं आ गए थे जहां मैं रहता था, जनसत्ता अपार्टमेंट में, और मैं वसुंधरा में रहता था, तो मैं कोशिश करता था शाम होते ही प्रभास जी के पास चला जाऊं,
और प्रभात जी किससे कहानी सुनाते रहते थे, कुमार गंधर्व के, इसके उसके। अब मुझ जैसा आदमी से संगीत का ज्यादा अभ्यास नहीं था, वो प्रभात जी की वजह से हुआ। कबीर सुनना शुरू किया, प्रहलाद टिपनिया जी उज्जैन के पास के आपके, उन्हें सुनना शुरू किया, समझ में आना शुरू किया कि निर्गुण गायन एक अलग परंपरा है लोक में हमारे यहाँ, जो पता ही नहीं थी हमको, तो वो पढ़ना लिखना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि उपनिषद कट रहा है।
मेरे पास बहुत बहुत सारी बातें करने को हैं और शायद पूरी रात गुजर जाएगी, और मुझे पता है कि इस पंडाल से एक आदमी हिलने वाला नहीं है अगर कुमार विश्वास यहाँ पूरी रात भी बैठे रहेंगे तो। देखिए ये सच है आपका, जिस तरह से आपने खिदमत की लोगों की और जिस उस खिदमत ने आपको जो दिया वो हम सबके सामने है। मैंने कहीं सुना था कि खुद ब खुद चल के कहाँ तर्ज सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फनाया है। तो डॉक्टर कुमार विश्वास को भी उस्तादों के पांव दाब के फनाया है। मैं चाहता हूँ वो फन अब इंदौर और आपके बीच से मनोज मुंतशिर लापता हो जाए।
ओ कल्प वृक्ष की सोंजुही, ओ अमल तास की अमल कली, धरती के आतप से जलते मन पर छाई निर्मल बदली। मैं तुमको मधुसद गंध युक्त, मैं तुमको मधुसद गंध युक्त संसार नहीं दे पाऊंगा। तुम मुझको करना माफ, तुम्हें मैं प्यार नहीं दे पाऊंगा। ओ कल्प वृक्ष की सोंगी, ओ कल्प वृक्ष की सोंगी, ओ कल्प वृक्ष की सोंगी।